नाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो कल आपने सुना, युधिष्ठिर जी ने पूछा था कि मरा हुआ आदमी कोई जीवित हो सकता है क्या? तो गीद और सियार के संवाद में एक ब्राह्मण का बालक था, वो जीवित भगवान शंकर की कृपा से हुआ। कई कई और भी बातें चली हैं इसमें। ये आपद धर्म है, अब जो है मोक्ष धर्म की बात चल रही है। मोक्ष इसमें शांति पर्व में कई अलग अलग पर्व हैं। पहले तो राजधर्मानुशासन पर्व आया, फिर जो आपद धर्म, अब मोक्ष धर्म आ रहा है। मोक्ष धर्म है ये विशेष ज्ञान की बात का भंडार है। इसको जल्दी जल्दी इसलिए नहीं कहेंगे कि इसमें ज्ञान की बात बहुत है। अब राजधर्म में इतनी ज्ञान की बात की अपने जरूरत नहीं थी। युधिष्ठिर पूछते हैं, धर्मा पितामहे नोक्ता राजधर्माश्रिता शुभा धर्मम आश्रमिणाम श्रेष्ठम वक्तुम अर्हसि पार्थिव। हे दादाजी, राजधर्म तो आपने बहुत बताए, अब आप हम लोगों को सामान्य लोगों के लिए उत्तम धर्म का विवेचन कीजिए। पितामह भीष्म कहने लगे कि शास्त्रों का अवलोकन करोगे तो कोई कहते हैं तपस्या से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, कोई कहते हैं दान पुण्य से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, क्योंकि नेहास्ति विफला क्रिया, कोई ऐसी क्रिया नहीं जिसका कोई फल नहीं होता हो। परंतु तुमने जो ये मोक्ष के लिए बात पूछी कि मोक्ष कैसे होता है, ये हमको बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मोक्ष के विषय में लोग सावधान कम रहते हैं। संसार के कामों में इतने उलझ जाते हैं, कभी कभी वे मृत्यु का विचार भी करते हैं तो यही सोचते हैं कि इस मृत्यु लोक के बाद हमको और आराम स्वर्ग में कैसा मिलेगा, स्वर्ग कैसे मिले। लेकिन आत्ममोक्ष निमित्तम वही यतेत मतिमान नर है, अपने कल्याण के लिए जो विचार करता है वो बुद्धिमान होता है। युधिष्ठिर कहते हैं कि महाराज, जिस आदमी का धन नष्ट हो जाए, बाप के सामने बेटा मर जाए, स्त्री मर जाए, मन में बड़ा शोक लग रहा है, ऐसा व्यक्ति मोक्ष को कैसे प्राप्त हो? क्या वो शोक को कैसे दूर करे? मोक्ष तो बाद की बात है, अंदर शोक उठता है, वो शोक कैसे दूर करे महाराज? ये तो हर घर में बीतने वाली बात है। केवल मेरे ही भाई बंधु मरे हैं इतनी बात नहीं है, और केवल इस युद्ध में ही मरे हैं इतनी बात नहीं, ये तो सृष्टि में हरदम मरने का क्रम चलता ही रहता है। हर घर में मरता है कोई न कोई, मरता ही है, हर घर में शोक होता है, तो शोक के लिए क्या करना चाहिए। पितामह भीष्म ने कहा कि हे युधिष्ठिर, तुम धर्म पुत्र हो इसलिए कितनी अच्छी बात पूछते हो। ये धन के चले जाने पर, शरीर के ऊपर कष्ट आने पर और किसी के मर जाने पर, ये तीन ऐसे धक्के हैं, ऐसा दुख होता है इन तीनों कारणों से, तो मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करती। तीन दुखों, एक तो धन चला जाए, एक शरीर में भयंकर बीमारी लग जाए, और एक अपना प्रेमी आदमी संसार से चला जाए, सदा के लिए वियोग हो गया, तीन धक्के। संतों ने कहा है, धन जाते तन कष्टते, घर मानस मर जाए, तीन धक्का से रामदास सकल विकल हो जाए। वही बात पितामह भीष्म पूछते हैं। तो युधिष्ठिर, शोक को तो अपने पास न आने के लिए पहले से ही कवच पहन लेना चाहिए। जैसे योद्धा युद्ध भूमि में जाता है तो वो ये सोचता है कि मेरे पर तलवार का भी प्रहार हो सकता है, भाले का भी प्रहार हो सकता है, बाण का भी प्रहार हो सकता है, तो क्यों नहीं मैं कवच पहन के जाऊं। तो जैसे वो कवच पहन करके योद्धा जाता है, शिरस्त्राण यहां पे एक कवच होता है वो पहन लेता है, और बाहुओं पर कवच रहता है, यूं ये कोनी तो हिल सकती है यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, और ये यहां पैर रखा रखता है, बाकी ये नीचे का शरीर है ये तो रथ में रहता है, और ये आंख वगैरह इनको तो वो इधर उधर से बचा सकता है, लेकिन जहां बाण लगने की संभावना है, जहां मृत्यु की संभावना है, कवच पहने रखता है। ऐसे मनुष्य को ज्ञान और विचार का कवच पहनना चाहिए। सबसे बड़ा कवच ईश्वर भक्ति है। युधिष्ठिर हरदम भगवत स्मरण करने वाला, भगवान को ही सच्चा मानकर चलता है, इसलिए वो शोक में दुखी नहीं होता। मुझे एक दृष्टांत याद आ गया। एक सेनजीत नाम का राजा था, उसका एक लड़का मर गया, नौजवान लड़का था, होनहार लड़का था, सारी प्रजा के अंदर भावी नरेश मान करके उसका बड़ा आदर था। राजा के सामने ही उसने राज्य का बहुत सा काम संभाल लिया था, पर अकस्मात मर गया। मर जाने पर वो शोक में डूब गया। अब उसको अपने पुत्र शोक के अलावा वो राजा कुछ सोचे ही नहीं। एक दिन एक ब्राह्मण आए, ब्राह्मण ने आकर के राजा को उपदेश दिया कि हे महाराज, मरे हुए आदमी के लिए यदि शोक करना जरूरी हो तो सबसे पहले आपको अपने आप पर शोक करना चाहिए, क्योंकि आपकी बाल्यावस्था मर गई, क्योंकि आपकी जवानी मर गई, पहले आप अपने ऊपर शोक करो, उसके बाद आप दूसरे जनों पर शोक करो। कितनी मूर्खता है। आप ये क्यों भूल गए कि संसार में जैसे आने का रास्ता है ऐसे जाने का भी तो रास्ता है। सर्वे तत्र गमिष्याम है, हम जहां से आए थे वहीं जाना है। ये इतना स्पष्ट विचार क्यों नहीं आपके मन में पैदा होता है? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, का बुद्धि ऐसा ज्ञान कैसे मिले, कौन सी तपस्या से मिले, कैसी समाधि लगाऊं, क्या ज्ञान प्राप्त करूं? बेटा मर गया, मैं जानता भी हूं कि सृष्टि का धर्म है, फिर शोक क्यों होता है? ब्राह्मण ने कहा, ये तुम जानते नहीं हो। तुम ये अपने परिवार के अलावा दूसरों को मरने वाला समझते हो, अपने शरीर को नित्य मानकर दूसरों के शरीरों को तुम मरने वाला मानते हो, जाने कहां तुम? यदि जानते तो संसार मरने वाला है, ये सबसे पहले तुम अपने शरीर को लेकर मानते कि मेरा शरीर मरने वाला है, तब तुम्हारा ज्ञान होता। अपने शरीर को नित्य मानते हो और दूसरों के शरीरों को मरने वाला देखते हो, इससे कोई लाभ नहीं। देखो कितनी अच्छी बात है ये। इसलिए सदा विचार करो, इस संसार में मैं एकदम अकेला रह रहा हूं, मेरा कोई नहीं है, कोई मेरा नहीं है, ऐसा विचार तो करो। सबसे नजदीक जो आपको अपना शरीर मालूम देता है, ये आपको मूर्खता से अपने नजदीक मालूम देता है, शरीर आपके नजदीक नहीं है। सारी पृथ्वी जैसा शरीर आपके नहीं, सारी पृथ्वी भी आपकी नहीं। और यदि शरीर मेरा है तो सारी पृथ्वी मेरी है, या तो सबको अपना मान लो, सब मेरे हैं, सब मेरे हैं। ऐसा नहीं माना जाता तो शरीर को भी मेरा मत मानो। एक काम करो, या तो सबको अपना मानो, पर भेद ज्ञान मत करो कि ये तो मेरा है और ये मेरा नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। एताम बुद्धिम अहम प्राप्य, आपकी तो आप जाने राजन, मैं तो सदा यही समझ के चलता हूं, मेरा करके या तो सब है या कोई नहीं है। इसलिए मैं न तो राजी होता हूं न मैं व्यथित होता हूं। राजन, नदी का प्रवाह है, एक लकड़ा और एक लकड़ा, ये दोनों ही चल चलते टक्कर खाए, थोड़ी देर साथ हो गए, यूं साथ साथ चलते रहे, वो एक अटक गया, अरे आगे चला गया, वो आगे जाकर अटक गया, फिर वो कोई तीसरा ही आ गया, उसने उसके ठोकर लगाई, फिर वो यूं चला गया, फिर वो चला गया। ऐसे काल रूपी प्रवाह के अंदर ये कोई बेटा बन गया, कोई पोता बन गया, ज्ञात है कोई हमारा ज्ञाति नाती बन गया, कोई भाई बंधु बन गया, और हम लोग उसमें फंस गए। अदर्शनाद आपतिता लोका पुनश्च दर्शनम गता, पहले ये थे नहीं और आगे ये रहेंगे नहीं, न जाने कहां अज्ञात जगह से तो आए थे और अज्ञात जगह जाने वाले हैं, किसके लिए शोक करें? तुमको पता है कि नहीं शोक कैसे होता है? देखो राजन, शोक होता है तृष्णा से, अंदर एक तृष्णा होती है, माने अगले व्यक्ति से कुछ हमारी इच्छाओं की पूर्ति का जो है आभास होता है, आश्वासन देता है कि इससे मेरी इच्छा पूर्ति होगी। वो पूर्ति नहीं होती है तब ये दुख होता है। तृष्णार्थी प्रभवम दुखम, तृष्णा के दुख से, तृष्णा के से जो व्याकुलता होती है वही दुख है। और दुख का जो विनाश होता है इसी का नाम सुख है। सुख से दुख पैदा होता है और दुख से फिर सुख पैदा होता है। ये सुख और दुख, दुख और सुख चलते रहते हैं। सुखस्य अनंतरम दुखम, दुखस्य अनंतरम सुखम। ये महाराज जी बराबर बराबर श्लोक बोलते थे। ये अदर्शनात् आपतिता लोका पुनश्च दर्शनं गताः, सुखस्य अनंतरम दुखम, दुखस्य अनंतरम सुखम। इस मोक्ष परम के बहुत श्लोक बोलते थे महाराज जी। पढ़े तब पता चले कि अरे महाराज जी ने ये कितनी कितनी बातें बताई। सुखात्वं दुखमापन्ने, सुख पूर्वक रहते रहते अकस्मात दुख आ गया और फिर अकस्मात सुख हो गया, तो सुख और दुख ही भोगते रहोगे क्या? यहां जब तुम्हारा बेटा पैदा हुआ तो कितने सुखी हुए थे, उस समय तुम ये भूल गए कि इसके बाद मुझे दुख भी होगा। तो देखो तुम भूल गए, बच्चा तो मर गया। तुम यदि पुत्र के उत्पत्ति में इतने सुखी न हुए होते तो आज इतने दुखी भी नहीं हुए होते। ये शरीर है, यही सुख भोगता है और यही दुख भोगता है। देहाभिमानी पुरुष है, वो देह को लेकर कर्म करता है और कर्म का फल सुख और दुख शरीर तक आता रहता है। देखो ये संसार के प्राणी जल ही सेकत सेतव है। जल के द्वारा एक मिट्टी का पुलिया बनाया, मिट्टी का पुलिया बनाया हूं और पानी के प्रवाह में, जल के प्रवाह में बह गया। ऐसे ही स्नेह पास के अंदर कितनी कितनी बातें वो लाते हैं और फिर वो एकदम बह जाती, खत्म हो जाते हैं। दूसरे लोग काम में लेते हैं, खुद के कोई काम आता नहीं। एक है क्लेशान अवापनोति और परत्रे है च मानव है। मनुष्य कर्म करता है तो अकेला ही कर्म करता है, उसको अकेले ही कर्म का फल भोगना पड़ता है। जैसे बूढ़े हाथी दलदल में फंस जाए तो निकलना मुश्किल है, ऐसे अनादि काल से जीव इस मोह के दलदल में कि मेरा बेटा है, मेरी स्त्री है, मेरा कुटुंब है, मेरा धन है, इस दलदल के अंदर ऐसा फंस गया बूढ़े हाथी के समान कि वो निकल नहीं सक रहा है। देखो पुत्र के नाश पर, वित्त के नाश पर, कुटुंबी लोगों के नाश पर, मन में जो दाह पैदा होता है उस दाह से आपको नई शिक्षा लेनी चाहिए। संसार में दो आदमी बड़े मूर्ख होते हैं। एक तो वे कि जो जानते हैं समझते हैं फिर भी रोते हैं, जानबूझ करके रोते हैं, जानते हैं लेकिन वे उससे दुख से ऊपर नहीं उठते, महामूर्ख होते हैं। और दूसरे वे जो जानते नहीं है वो तो मूर्ख है ही। दोनों प्रकार के मूर्ख हैं। ज्ञान का आनंद ले, ज्ञान का आनंद लोगे तो तुमको सही आनंद मिलेगा। शोक स्थान सहस्राणी, चिंता और शोक के हजारों स्थान है। ये महाराज जी बहुत बोलते थे, शोक स्थान सहस्राणी और भय स्थान शतानी चे, दिवसे दिवसे मूढ़म आविशंति न पंडितम। हजारों हजारों शोक के स्थान है और भय के सैकड़ों स्थान है और प्रतिदिन आदमी शोक और मोह में पड़ा ही रहता है। दिवसे दिवसे मूढ़म, एक दिन में आदमी कितनी बार सुखी होता है कितनी बार दुखी होता है। पंडित लोग दोनों में सावधान रहते हैं। बुद्धिमान वही है और शिक्षित मनुष्य भी वही है, बहुश्रुत व्यक्ति भी वही है कि जिसके हृदय में शोक पैदा न होता हो, शोको न स्पृशते नरम। ऐसी बुद्धि का आश्रय ले, ऐसी बुद्धि का आश्रय लेने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। जीवों को प्रिय अप्रिय ये दोनों प्रकार की चीजें मिलेंगी ही क्रम से बार बार। जीवेशु परिवर्तन्ते दुखानि च सुखानि च, और प्रियाणी और अप्रियाणी सब मिलेगा, लेकिन ये सब पूर्व देह कृतम कर्म है, पिछले देह का कर्म फल है। इसलिए मनुष्य को यहां बिल्कुल गंभीर और शांत रहना चाहिए। जैसे तेज हवा चलती है, उस समय में जिस दिशा की हवा चलती है दूब होती है, उस दिशा के अंदर ही मुड़ जाती है, घास दूब है। इधर से तेज हवा आई तो दूब यूं हो जाएगी, और इधर की हवा इधर यूं हो जाएगी। ऐसे ही प्रारब्ध से सुखदाई दुखदाई परिस्थिति आ जाए तो उसको सह लोगे, हाँ ठीक है भाई, दुख भी सही सुख भी सही, सुखी और दुखी ना हो, सह लो उसको। लेकिन वृक्ष होता है वो ठूंठ खड़ा रहता है, हवा आती है वो झुकता नहीं रहता, तो जड़ सहित उखड़ जाता है। इसी प्रकार से मूर्ख आदमी सुख और दुख अवस्था के अंदर अहंकार पूर्वक अड़ा रहता है। न बिभेति तदा चायम यदा चास्मान न बिभ्यति। जो व्यक्ति शोकग्रस्त चिंताग्रस्त नहीं होता, वो व्यक्ति न तो किसी और को डराता है और न स्वयं किसी से डरता है। ऐसा व्यक्ति होता है ब्रह्म संपद्यते तदा, वो ब्रह्म को प्राप्त होने वाला, न किसी से राग है और न किसी से द्वेष है। यदा न इच्छति न द्वेष्टि। इसलिए मनुष्य को तृष्णा का त्याग करना चाहिए। मूर्ख आदमी सब कुछ त्याग कर देगा, तृष्णा का त्याग नहीं कर सकता। लेकिन वो ये नहीं सोचता है कि जिस तृष्णा का मैं मुझे त्याग करना चाहिए, वो तृष्णा मैं कब छोड़ूंगा, शरीर जर्जरित हो गया फिर भी वो नहीं सोचता। ये प्राणांतक रोग है, प्राण अंत, प्राणों का अंत हो जाएगा उसके बाद भी तृष्णा साथ में जाएगी। इसलिए तृष्णाम त्यजत सुखम। हमको पिंगला की बात याद आती है। देखो दत्तात्रेय जी ने तो पिंगला की बात कही, वो एक दत्तात्रेय जी का ही नहीं, और भी लोग बोलते हैं यहां, कहते पिंगलया गीता गाथा। पिंगला ने कितनी बढ़िया बात कही। पिंगला वेश्या बैठी रही और कोई नहीं आया तो बड़ी शांत हो गई। शांत होकर के सोचने लगी कि मेरा सच्चा प्रियतम तो मेरे पास ही है। अंतिके रमणम संतम, मेरे साथ रमण करने वाला, मेरे साथ हरदम रहने वाला मेरा कांत, मेरा प्रियतम मेरे साथ है, और मैं उसको पहचान नहीं पाई, ये मेरी गलती है। कितनी बढ़िया बात है। ये शरीर क्या है, ये 9 दरवाजों वाला एक गंदगी से भरा हुआ है, और गंदगी से भरे हुए शरीर वाले को ही मैं कांत कहकर के बोलने लगी। अब ऐसे सुंदर शरीर में रहता हुआ भी शरीर धर्म से अलग रहने वाला ऐसे पति को छोड़कर मैं क्यों शरीर पति को मैं प्राप्त हूं। अकामाम काम रूपेण धूर्ता नरक रूपेण है। अब मेरे अंदर ज्ञान की बात पैदा हो गई है, अब मेरे अंदर किसी प्रकार की कोई कामना नहीं रही है। ये धूर्त मनुष्य मुझे नरक में ले जाने वाले हैं, मैं जाग गई हूं। कभी कभी अनर्थ भी अच्छा लगने लगता है, पर ये सब अज्ञान के कारण से होता है। सुखम निराश स्वपिति, जिस जो सबसे निराश होता है उसको बड़ा सुख मिलता है, इसलिए आशा को निराशा में बदलो। सुखम स्वपिति पिंगला, इसलिए राजन युधिष्ठिर महाराज ये उपदेश उस ब्राह्मण ने सेनजीत को दिया, वो उपदेश तुम भी अपने मन में अच्छी तरह से धारण करो। राजा कहने लगा, महाराज जो समस्या सेनजीत की है वो समस्या सबके साथ है। सब प्राणियों का संहार करने वाला काल किसी को नहीं छोड़ता है, काल के प्रवाह में सब बहते जा रहे हैं, तो इस बहते हुए समय में मनुष्य अपना कल्याण कैसे करे। महाराज तात्कुरियात प्रजानन, हे पिताजी आप मेरे से प्रश्न करने से पहले ये बताओ कि तीव्र गति से हमारी आयु का नाश हो रहा है, इस आयु के नाश के क्रम में एक भी क्षण ऐसा नहीं है कि जिस क्षण में हम लोग मरते न हों, हर क्षण मृत्यु में ही जा रहे हैं। अब ऐसे समय में हमको क्या करना चाहिए? मैंने क्या अध्ययन किया, ये सब बाद की बात है। पिता ने कहा कि देखो बेटा, पहले वेदों का अध्ययन करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर गृहस्थ आश्रम में आओ, योग्य संतान हो जाने के बाद अग्नि आदि की उपासना करो, और फिर उसके बाद परिवार को छोड़कर वन में चले जाओ, और फिर तुम सन्यासी बन जाओ। ये काम शास्त्र में बताया, तुमको ये करना चाहिए। पुत्र ने कहा कि जब ये आदमी मृत्यु से घिरा हुआ ही है, क्या आपको ये पता है कि वो ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ आश्रम में जाएगा, और गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ में, और उसके बाद सन्यास में जाएगा? अमोघासु पतंतीषु किम धीर इव भाससे, यहां मृत्यु का प्रवाह तो अमोघ है, बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाता, सब उसका मारने का प्रहार ठीक पड़ रहा है, और आप चार आश्रमों को पार करने के बाद की बात सोचते हो। महाराज पिताजी कहते हैं कथम अभ्यातो लोके है, तुम भयभीत क्यों हो रहे हो? क्यों भयभीत हो रहे हो? काल से भयभीत हो रहे हो? तो काल तो भाई किसी को छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए भयभीत होने की क्या बात है? मरना तो है ही, मरने से पहले अपने को सावधान हो जाना चाहिए, बात तो इतनी है। पुत्र कहता है कि महाराज पिता, ये दो प्रकार की बीमारी है, एक तरफ मौत रे एक तरफ बुढ़ापा, दोनों से आदमी ऐसा कस गया किधर जाए। अहो रात्रा पतंत्येते ननु कस्मा न बुद्ध्यसे, रात और दिन, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, रात्रि में प्रवेश हो गया, दिन में प्रवेश हो गया, रात्रि में चला गया, ऐसे रात और दिन के इस पाट के अंदर ये पिसा जा रहा है। दो पाटन के बीच में साबत बचा न कोई, और फिर जो है बुढ़ापा का देख नया ही दुख होता है। फिर आप बताओ कि अब जो है आप कौन से काम में लगना चाहते हो? अमोघ रात्रयश्चापि। पिताजी मनुष्य सोचता है, सोचते समय कल सुबह उठूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, रात्रि में ही पता नहीं चलता है, चला जाता है। और दिन में सोचता है कि अब जो है रात्रि में विश्राम करेंगे और कल ऐसा करेंगे, वो रात्रि नहीं आती, मर जाता है। यस्याम रात्र्याम व्यतीतायाम न किंचित शुभम आचरेत। जब जो समय भगवान के स्मरण के बिना जाता है, उस दिन को विद्वान पुरुषों ने व्यर्थ बताया है। और मौत ऐसी आती है जैसे घास चरता हुआ भेड़ है, भेड़, और उसके पास एकदम सिंह आ जाए, एकदम अकस्मात आ जाए, ऐसे ही अकस्मात मौत आने वाली है। मौत आने से पहले कुछ ऐसा नहीं लगता कि अब मौत आए, वो अकस्मात ही आती है। पिता ने कहा अकस्मात कैसे आती है, सफेद बाल होते हैं, शरीर कांपने लगता है, डोलने लगता है, बीमार होता है, अकस्मात कैसे आती है? तुम्हारा अकस्मात कहने का क्या तात्पर्य है पुत्र? के अकस्मात का मेरा तात्पर्य यह है कि जिस समय आदमी रोगी होता है, बुढ़ा होता है, शरीर कंपित होता है, उठने बैठने लायक नहीं होता, तब भी वो सोचता है कि अभी जी रहा हूं, मौत तो बाद में आएगी, मौत बाद में आएगी। ये जो उसका विचार है, ये इतना गलत विचार है, इसलिए मनुष्य को सोचना चाहिए मौत कभी भी आ सकती है। स्व कार्यम अद्य कुर्वीत है, कल होने वाला काम उसको आज कर लो। और पूर्वान्ने चा परान्निकम, सायंकाल में जो काम होने वाला है वो पूर्व काल में प्रातःकाल ही कर लो। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, मृत्यु आपकी ये प्रतीक्षा नहीं करेगी कि आपने अपना काम पूरा किया कि नहीं किया। एक आदमी पत्र लिख रहा था, पत्र लिखते लिखते ही मर गया, पत्र पूरा ही नहीं हुआ, पत्र लिख रहे थे, पत्र लिख रहे थे, अमुक से राम राम वंचना, ये तो नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतम अस्य नवा कृतम, इसने अपना काम बिचारे ने अधूरा किया, ये काम तो पूरा कर लेने दे, ऐसा भी नहीं देखते। युवई वे धर्मशील स्यात्, बचपन से मनुष्य को सावधान रहना चाहिए। ये बड़ा खतरनाक विचार है कि हम आगे जाकर मरेंगे, अभी तो जी रहे हैं और आगे मरेंगे, ये खतरनाक विचार है, इससे कोई लाभ नहीं है। अभी मर रहे हैं, इसी में ही लाभ है। पिताजी ये आपने इतना धन संचय किया है और आपने इतने पशु संचित किए हैं, आपने इतना जो कुछ किया है, क्या मृत्यु को आपने याद रख के किया है? यदि मृत्यु को आप याद रखते तो इनके सब संग्रह में नहीं लगते, बल्कि आपके हृदय में वैराग्य होता। ईश्वर ने कैसी कृपा की है कि वैराग्य के लिए मृत्यु बनाई है। मृत्यु नहीं बनाते तो मनुष्य कितने अंधकार में पड़ा रहता, मोह के अंधकार में पड़ा रहता। मृत्यु इतना सावधान है कि दुर्बल हो, बलवान हो, डरपोक हो, शूरवीर हो, मूर्ख हो, विद्वान हो, चाहे उसका काम पूरा हो चाहे अधूरा हो, तो वो मार ही देता है। ये जो घर गृहस्थ में आसक्ति होती है, ये मृत्यु का फेंका हुआ एक जाल है। जैसे मछली को पकड़ने वाला जाल मछुआ फेंकता है और उसमें मछलियां अटक जाती हैं, इसी प्रकार निबंधनी रज्जु रेशा, ऐसे ये मुंह की एक रचना है, डोरी है, इसके अंदर जीव फंस जाता है। ये मेरा शरीर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा धन है, बस उसमें ऐसा रम जाता है कि मृत्यु को भूल जाता है, बस यही चाहती है मृत्यु। न मृत्यु सेनाम आयांतिम, मृत्यु की आती हुई सेना को याद नहीं रखता है। इसलिए पिताजी एक सत्य के ऊपर रहो। बहुत बढ़िया बात है, हमारे शरीर में एक मरने वाली चीज है और एक शरीर स्वयं मरने वाला और एक न मरने वाली चीज है। अमृतम चैव मृत्युश्च, दो चीजें हैं हमारे पास। अब जो सावधान है वो तो अमृत के अंदर डूबा रहता है और जो असावधान होता है वो मृत्यु के अंदर चला जाता है। जैसे कोई बहुत जोर से तूफान आता हो तो कोई कहीं जाकर ओट में बैठ जाता है तो तूफान से बच जाता है, नहीं तो तूफान के अंदर बहा हुआ व्यक्ति कहीं का कहीं चला जाता है। ये दूसरे दूसरे यज्ञों के अंदर कैसे फंस गए पिताजी, जिसमें यज्ञ जिन के अंदर पशु यज्ञ होता है, हिंसा होती है, ऐसे यज्ञ बिल्कुल नहीं करने चाहिए। जिसकी वाणी और मन दोनों भगवान में लगती हो वही त्याग और वही यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। विद्या के समान नास्ति विद्या समम चक्षुः, ज्ञान के समान कोई नेत्र नहीं है और ज्ञान प्राप्ति के समान, सत्य की प्राप्ति के समान कोई तपस्या नहीं है। नास्ति सत्य समम तपः, नास्ति राग समम दुखम, और कहीं राग रखो उसके समान दुख नहीं है। और नास्ति त्याग समम सुखम, त्याग के समान कोई सुख नहीं है। पिताजी ब्राह्मण की सबसे बड़ी संपत्ति तो एक सब जगह विराजमान जो परमात्मा है उसके ऊपर जो दृष्टि है, समता पर दृष्टि है, ये ब्राह्मण की संपत्ति है। अपने परब्रह्म परमात्मा में सत्य तत्व में स्थिति है, सत्यता है, ये ब्राह्मण की संपत्ति है। और अपना जो शील आचार है, परम शुद्ध आचरण है, ये ब्राह्मण की संपत्ति है। इस ब्राह्मण से, ब्राह्मण के अतिरिक्त इसके अलावा कोई ब्राह्मण के पास संपत्ति नहीं है। पिताजी ज्यादा धन हो जाएगा, कुटुंब हो जाएगा, और ज्यादा कुटुंब में आसक्ति हो जाएगी, मरिष्यति, मर जाएंगे। इसलिए अंदर ही अंदर से अपने को सबसे विमुख होकर गुहाम प्रविष्टम, गुफा में जाकर बैठ जाओ। ये आत्मा रूपी गुफा है, इसमें जाकर बैठ जाओ। देखो पिताजी, पिता महास्त्वे, पिता महास्ते क्वगता पिता चे। आपके दादाजी आपको याद है ना? कि हाँ याद है। तो कहाँ है आज? नहीं है। अच्छा पिताजी, आपको आपके पिताजी याद है? कि पिताजी याद है लेकिन कहाँ है कि नहीं है। तो ऐसे ही पिताजी अपने लिए पूछेंगे कि वो है क्या, तो कहेंगे नहीं है। आज हम अपने को मानते हैं कि हम यहाँ हैं। पिता महास्ते क्वगता पिताच, वो दशा हमारी हो जाएगी। पितामह भीष्म ने कहा कि बेटा, अपने पुत्र की ये बात सुनकर पिता बड़े प्रसन्न हो गए। कहने लगे, बेटा कहीं तो बाप बेटे को ज्ञान देता है और आज बेटे ने बाप को ज्ञान दिया, हम ये संपत्ति अंपत्ति छोड़ करके भगवान के भजन में लगेंगे। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि महाराज वास्तविक सुख कैसे मिलता है। भीष्म पितामह कहने लगे, हाँ साथ में यह भी पूछा है कि संसार में धनी आदमी भी है और गरीब आदमी भी है, और दोनों स्वतंत्र हैं, दोनों स्वतंत्र हैं, मर्जी आए जैसा करते हैं, तो इनको सुख दुख की प्राप्ति कैसे होती है महाराज? तो पितामह भीष्म ने कहा कि देखो, एक शंपाक नाम के ब्राह्मण थे, बड़े गरीब थे, फटे पुराने कपड़े पहनते थे, बड़ा उनको कष्ट, उनकी स्त्री भी बड़ी दुखपूर्ण रहती थी। दरिद्रता आ जाने के कारण से स्त्री रोज उनको चुभती हुई बात बोलती थी। तो वो संपाक नाम का ब्राह्मण था ना, वो अपने आप ही विचार करने लगा कि देखो पहले मेरे पास धन था तो मेरे परिवार के लोग मेरा बड़ा आदर करते थे और मेरी स्त्री मेरे हर सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखती थी। मेरा धन चला गया तो मेरा परिवार ही मेरे से नाराज रहने लगा, धन जाने में अब मैं क्या कर सकता हूं। संसार में जो उत्पन्न होते हैं उनको विविध प्रकार की परेशानियों को देखना ही पड़ता है, सुख दुख को देखना ही पड़ता है। न सुखम प्राप्य संदिश्येत, इसलिए सुख को प्राप्त करके राजी मत हो, और न असुखम प्राप्य संज्वरेत, और असुख को प्राप्त करके कोई दुखी मत हो। मैं जानता हूं कि दरिद्री आदमी की संसार के अंदर बड़ी बेइज्जती होती है, परंतु ये दरिद्रता परमात्मा की तरफ चलने में बड़ी सहायता करती है। आकिंचन्यम च राज्यं च तुलया समतोलयम्, यदि मैंने दरिद्रता और राजत्व का दोनों का निर्णय किया तो दरिद्रता अच्छी है। खूब बड़ा धनवान हो उसको रात को नींद नहीं आती। श्रिया भिक्षणम संवास है, खूब यदि उसके पास धन है तो सदा उसका चित्त उस धन के अंदर ही घूमता रहता है। उस धनी आदमी को बार बार क्रोध आता है, वो होठ को दबा दबा के बात करता है। कस्तम मिच्छेत परिदृष्टुम, उसको कोई जाकर बोलने का साहस नहीं करता। धनवान क्रोध लोभाभ्याम आविष्ट है, जिसके पास जितना धन होगा वो उतना ही काम क्रोध आदि शत्रु के सामने महान कमजोर हो जाएगा और बात बात में उसको क्रोध आएगा, बात बात में कामना पैदा होगी, लोभ पैदा होगा, तिर्यक इच्छा है, यूं टेढ़ा टेढ़ा देखेगा, शुष्क मुख है और सुखी सुखी बात करेगा, अच्छे ढंग से बात नहीं करेगा। पाप को भ्रिकुटी मुख है, भ्रिकुटी वो ताने में रखता है, क्या फायदा है ऐसे धन से। मेरे को भगवान ने बड़ा अच्छा किया, गरीब बना दिया है, मैं कितनी अकड़ाई के साथ चलता था ये अकड़ाई मेरी खत्म कर दी। मैं ये विचार नहीं करता था कि मैं ये धन लाता हूं तो ये धन मेरे क्या काम आएगा, कुछ में विचार नहीं आता है। जितना आदमी धन संग्रह करता है उतना उसके धन काम नहीं आता। तेषाम परम दुखानाम बुद्ध्या भैषज्यम आचरेत, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह दरिद्रता को अपनी दवाई समझ करके स्वीकार करे। दरिद्रता माने पैसा नहीं है, दरिद्री है, हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं, बड़ी अच्छी दवा है ये संसार रूपी जन्म मरण का रोग, उसके अंदर ये दवाई का काम करता है। ऐसी संपाक ने हमारे सामने हस्तिनापुर के अंदर ये बात कही, पितामह भीष्म ने कहा। युधिष्ठिर महाराज पूछने लगे कि महाराज कोई आदमी खूब धन कमाने लगे तो उसको धन नहीं मिले तो वो क्या करे। कि देखो चार बातें आदमी को नहीं छोड़नी चाहिए। एक तो सब आदमियों में परमात्मा को देखना, सब में परमात्मा है। एक अनायासम माने व्यर्थ परिश्रम का अभाव, फालतू की क्रिया करे ऐसा नहीं करना चाहिए। एक सत्यवाक्य, एक निर्वेद माने वैराग्य, और एक अविदित्सा माने काम न करने के अंदर आलसीपना, आलसीपना समझ, ये चपास बातें नहीं होनी चाहिए। कहते हैं कि देखो एक मंकी नाम का ब्राह्मण था, ऋषि मुनि था, वो भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो गया। उसके पास जो कुछ था सब धन इधर उधर चला गया, थोड़ा सा धन बाकी रहा, उस धन से दो बछड़े खरीद लिए। दो बछड़े खरीद करके और दोनों बछड़ों को यूं डोरी में बांध दिया और वो उनको हल चलाने की शिक्षा दे रहा था। इतने में एक ऊंट आ गया तो बछड़े बड़े चंचल उसके हाथ से जो है छूट गए डोरी से, अपने बंधी हुई डोरी दे दोनों भगते गए। भगते भगते ऊंट आया, वो तो ऊंट था वो बैठा हुआ था, तो बैठे हुए ऊंट के पास वो कुचलते गए तो उसकी गर्दन के वहां पर ये दोनों एक एक हो गए। ऊंट चमक गया, चमक करके खड़ा हुआ, खड़ा हुआ दोनों लटके। उद्यम्य उद्यम्य, वो जो है ये उछल उछल करके इधर उधर जावे करे क्या, वो ऊंट यू हो गया वो, और दोनों एक इधर उधर लटक गए। उनको लटकता हुआ देख करके सोचने लगा कि अरे ये दोनों बछड़े तो अब लटक रहे हैं तो मर जाएंगे। मणिवोष्ट्रस्य लंबेते प्रियौ वत्स तरौ मम, ये दोनों मेरे प्यारे बछड़े यहां पर लटक करके मर जाएंगे, अब क्या होगा। जो मेरी पहले धन आदि में लिप्सा थी अब वो मेरी लिप्सा यहां बछड़ों में आ गई। अरे मैंने सोचा कि बछड़ों से खेती करूंगा और खेती से धन मिलेगा और धन से मैं वापिस सुखी हो जाऊंगा। संचितम संचितम द्रव्य, मैं खूब द्रव्य इकट्ठा कर लूंगा, वापिस धनवान बन जाऊंगा। ये मेरी कैसी तुच्छ विचारधारा थी। घबरा गया वो, घबरा करके अपने मन को बड़ी उलाना दी कि अरे मन तेरे कहे कहे मैं कितना चला हूं। नूनम ते हृदयम काम वज्र सारमयम दृढ़म, ए कामनाओं तुमने मेरा हृदय को फौलाद बना दिया, अरे क्रोध तूने मेरे हृदय को जला दिया, अरे लोभ तूने तो मेरे हृदय को पदार्थों के अंदर लिपलिपायमान कर दिया। अर्थ लोलुपता दुखम, पैसे की जो लोलुपता है ये बड़ी भारी दुख की बात होती है। जब तृष्णा का नाश होता है उससे जो आनंद मिलता है, कहते हैं त्रिलोकी का जो महान सुख होता है वो उसके सामने सोलह अंश भी नहीं है। यच्च काम सुखम लोके, यच्च दिव्यम महत सुखम, तृष्णाक्षयम तृष्णाक्षय सुख से इते नार्हते षोडशीम कलाम। इसलिए तृष्णा का नाश होने में जो आनंद होता है वो नहीं होता। पितामह भीष्म ने फिर कहा कि देखो जनक जी महाराज सोचते थे कि मेरे पास कितना धन है, लेकिन बार बार विचार करते कि इस धन में अभी आग लग जाए या मैं मर जाऊं तो कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा पहले से ही सोचते थे। मिथिलायाम प्रदीप्तायाम, सारी मिथिला में आग लग जाए, नमे दह्यति किंचन, मेरे मन में आग नहीं लगेगी। ऐसे अपने आप के अंदर बराबर बराबर विचार करते रहते थे। मनुष्य को हरदम अपनी मृत्यु को देखते रहना चाहिए। अब युधिष्ठिर महाराज नया प्रश्न करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण
श्री श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
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 श्यावर रामचन्द्र की
जय
मोर मुकुटवंशी वाणी जय अनंत श्री हरि रामदास जी महाराज की
जय
अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की
जय
आनंद कंद भगवान की
जय
भक्तवत्सल भक्त